समय सार लेक्चर नंबर 839। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम
शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वैचायाणं, नमो लोये सवसाहूणं,
नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय
भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे
ध्रुवमचलमनोवमङ्गदीं पते वोच्चामि समयपाहुर मिनमो सुदकेवली। यह 47 शक्ति में से हम चिति शक्ति को देख रहे हैं और हम पेज नंबर 23 पर आए हैं। यहाँ जो नया पैराग्राफ होता है वहाँ गुरुदेव बता रहे हैं, आ तो वितराग नो मार्ग छे बापू, आ कोई साधारण चीज न थी, अंतर अनुभव ना महान पुरुषार्थ वड़े प्राप्त था। कौन वितराग नो मार्ग एवी चीज छे, अरे पण अरे पोताना त्रिकाळी स्वरूप ने भूली ने अनादि थी एने पर्याय ऊपर लक्ष्य कर्युं छे। यानी हमारी भूल क्या हो रही है इस बात का हमें एहसास दे रहे हैं कि अपना स्वभाव कैसा है, स्वरूप कैसा है, तो त्रिकाली है। और वो जो त्रिकाली, जो स्वभाव जो हमेशा त्रिकाली होता है, उसके तरफ न देखते हुए यह जीव पर्याय ऊपर नजर कर रहा है। और पर्याय ऊपर केवल नजर नहीं करता है, पर की पर्याय रूप ही अपने को मानता है। ये तो और महान खोटापन है। अब यहाँ कहते हैं कि पर्याय पर्याय ने ये इतना याद नहीं कर कहेंगे, अरे साहब हमको याद नहीं रहता है। अरे अपने को क्षमक्षम ज्ञानी मानना ये पहली भूल, पर्याय जितना माना, ख्याल में आया? नहीं साहब अभी बुढ़ापा आ गया ना तो याद नहीं रहता है। तो तूने शरीर की अवस्था को अपना शरीर माना, अपना माना, अपना स्वरूप माना, इस तरह से कह रहे हैं। पोताना त्रिकाळी स्वरूप ने भूली ने अनादि थी एने, एटले ए मूर्खे पर्याय ऊपर लक्ष्य कर्युं छे। एक समय नी पर्याय नी पाछळ पूरण परमात्म तत्व अंदर पड्युं छे, पण अरे एनी दृष्टि ना अभावे एना भवना अंत आव्या नहीं। यानी अपने त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि की नहीं, इसलिए उसके भव का अंत अभी तक आया नहीं है। आहा भाई, पंच महाव्रतादिना क्रियाकांड मां मंदरा करे तो देवना भव मळे, पण भवना अंत न आवे, आवू बधु तो एने अनंत काल मां अनंत वार कर्युं छे। ए पेलू एटले नवू नथी, अंदर भगवान आत्मा अनंत शक्ति नो सागर चैतन्य निदान प्रभु छे, तेनी अंतरदृष्टि वडे आनंद नो अनुभव आवे, निराकुळ शक्ति नो स्वाद आवे, ते अपूर्व छे। आहा, अंतः पुरुषार्थ जागृत करी स्वरूप मां स्फुरायमान वीर्य वडे अनंत गुणनी निर्मल पर्यायना स्वरूपनी रचना करे, तेने भवना अंत आवी जाय छे, आवो मारक छे। अंदर आत्मा मां एक वीर्य गुण छे, आत्मबल नामनो अंदर एक गुण छे। आत्मबल कहो या वीर्य गुण कहो, एक ही बात है। ते स्फुरायमान थवा वडे चेतना गुणना परिणमननी साथे बीजा अनंता गुणनी निर्मल परिणतिनी ते रचना करे छे। आहा, रागनी रचना करे ते वीर्य गुणनु कार्य नहीं। दयादान व्रत भक्ति इत्यादि ना शुभ रागनी रचना करे એ તો નપુસકતા છે. આહા, જેમ હિજડાને વીર્ય નથી તો તેને પ્રજોત્પત્તિ થતી નથી, તેમ ભગવાન આત્માને ભૂલીને શુભાશુભ ભાવની રચના કરે તેને ધર્મની પર્યાયરૂપ પ્રજાની ઉત્પત્તિ થતી નથી. યે સંસ્કૃત મેં ડાયરેક્ટ ક્લિબ એસા શબ્દ વાપરા હૈ, ઉસી કા અર્થ નપુસક હૈ, ઉસી કા અર્થ યહાં અન્ય બતાયા હૈ. ભાઈ, શુભાશુભ ભાવ થાય તે આત્માની ચીજ નથી, સ્વભાવ પર્યાયની ઉત્પત્તિ થાય તે આત્માના વીર્ય ગુણનું કાર્ય છે. યે સમ ઇમ્પોર્ટન્ટ હૈ. વીર્ય ગુણ ક્યાં કરતા હૈ? તો કહેતે હૈ સ્વભાવ રૂપ જો પર્યાય કી ઉત્પત્તિ હોતી હૈ વહ વીર્ય ગુણ કા કાર્ય હૈ. અને તે અંતર સન્મુખ પુરુષાર્થ વડે દ્રષ્ટિમાં ભગવાન આત્માનો સ્વીકાર કરીએ પ્રકટ થાય છે. યાની યે સ્વભાવ કી ઉત્પત્તિ, સ્વભાવ પર્યાય કી ઉત્પત્તિ કબ હોતી હૈ? કે જબ યહ જીવ અંતર સન્મુખ પુરુષાર્થ કરતા હૈ ઓર અપને શ્રદ્ધા મેં ભગવાન આત્મા કા સ્વીકાર કરતા હૈ, તબ યે સ્વભાવ પર્યાય કી યાની રત્નત્રય કી ઉત્પત્તિ હોતી હૈ. ભગવાન આત્માનો જ્યાં દ્રષ્ટિમાં સ્વીકાર કર્યો ત્યાં અનંત શક્તિઓ પર્યાયમાં ઉછળે, નિર્મળ ઉછળે છે. આ અંત સન્મુખ થઈ જે નિજ પરમાત્મ દ્રવ્યનો સ્વીકાર કરે તેની વાત છે હો, માત્ર ઉપર ઉપરથી હા પાડે એની આ વાત નથી. અરે ભાઈ, નિજ પરમાત્મ દ્રવ્ય તો ત્રિકાળ શુદ્ધ એક ચિત્ત સ્વભાવ પણ અંતરંગમાં વિરાજે છે, પણ અજ્ઞાનીને એનો સ્વીકાર ક્યાં છે? એ તો અંત સન્મુખ થઈ એની દ્રષ્ટિ કરતા એનો સ્વીકાર થાય છે, અને ત્યારે એને જ્ઞાન માત્ર ભાવની અંદર જીવત્વ ચિતિ દૃષ્ટિ વીર્ય આદિ અનંત શક્તિઓ પર્યાયમાં પ્રકટ થાય છે. આનું નામ ધર્મ ને આ મોક્ષ માર્ગ છે. આ સિવાય વ્રત તપ ભક્તિ આદિ બધું થોથા છે. જો આ બીજી ચિતિ શક્તિનું વર્ણન ચાલે છે, આત્મદ્રવ્યને કારણભૂત પહેલા જીવત્વ શક્તિ કહીને તેના ચાર દર્શન જ્ઞાન આનંદને વીર્ય ચૈતન્ય ભાવ પ્રાણ કહ્યા. આવા ચૈતન્ય ભાવ પ્રાણ વડે જીવ અનાદિથી જીવે છે, જીવતો હતો અને અનંતકાળ જીવશે. તો લોકો કહે છે ને કે જીવો અને જીવા દો, આ ભગવાન મહાવીરનો સંદેશ છે. અરે જૈનો પણ રથયાત્રા પ્રસંગે સૂત્રો પોકારે છે કે ભગવાન મહાવીરનો સંદેશ જીવો અને જીવવા દો, આ શું છે? અરે ભાઈ, જીવવા દો એટલે બીજા જીવોનો જીવન આના હાથમાં છે એવો ભગવાન મહાવીરનો સંદેશ નથી. વો યે જો હૈ ના તો વો ભી કિસ પર સે નિકાલા, પરસ્પરોપગ્રહ જીવાનામ. તો જીને દો ઓર જીવો ઓર જીને દો, એસા કર દિયા ઉન્હોને. તો કહેતે બીજો બીજાને જીવાડે અને બીજાનો જીવાડ્યો બીજો જીવે એ ભગવાન મહાવીરની વાણી નથી. નલિનભાઈ સમજમાં આવ્યા ક્યાં કહે રહે? દેખો ક્યાં કહેતે, બીજો યાને દૂસરા કોઈ દૂસરે કો જિંદા રખે જીવાડે, અને બીજાનો જીવાડે દૂસરેને જિંદા રખા એટલે દૂસરા જીજ રહા હૈ, એસે ભગવાન મહાવીર કી બાત હો નહીં સકતી. કોઈ કોઈને જીવાડે કે હણે એ વસ્તુ સ્વરૂપ નથી, હને અને નાશ કરે મારે, અને એ ભગવાનની વાણી નથી. જીવમાં ત્રિકાળ જીવત્વ નામની શક્તિ છે, અને ત્રિકાળ ચૈતન્ય ભાવ પ્રાણ વડે અનાદિ અનંત જીવનું જીવન છે. આહાહા, આજ આવી નિજ જીવન શક્તિને ઓળખી અંતર્મુખ નિરાકુલ જીવન જીવે જીવ જીવે તે યથાર્થ જીવન છે. આવું જીવન પોતે જીવો ને સૌ કોઈ જીવો એવો ભગવાન મહાવીરનો સંદેશ છે, ઉપદેશ છે. સમજાણું કાંઈ? સમયસારની બીજી ગાથામાં જીવો શબ્દ છે, એમાંથી આચાર્ય દેવે આ જીવત્વ શક્તિ કાઢી છે, ને જીવત્વનું ચિતિશક્તિ લક્ષણ છે તેથી અહીં બીજી ચિતિશક્તિ કહી. આહા, આ જીવત્વ શક્તિ ચિત્તી શક્તિ ઇત્યાદિ શક્તિઓ છે એ તો ત્રિકાળ જીવતા જાગતા જીવની જાહેરાત કરે છે. ભાઈ આ શક્તિઓ છે એ તો અંદર ભગવાનના દરબારનો અનુપમ અનમોલ ખજાનો છે. અંતર સન્મુખ દ્રષ્ટિ વડે તેને ખોલી દે. ચૈતન્યનું નિદાન ધ્રુવધામ પ્રભુ આત્મા છે. આવા પોતાના ધ્રુવધામને ધ્યેય બનાવી ધીરજથી ધ્યાનની ધગકતી ધૂણી ધખાવી ધર્મી જીવ જીવન જીવે છે. જીવે તેને ધન્ય છે. એ અનુપ્રાસ બહુ અચ્છા ઉન્હોને સાધા હૈ. ક્યાં કહા? આવા પોતાના ધ્રુવધામને ધ્યેય બનાવી ધીરજથી ધ્યાનની ધધકતી ધૂની ધકાવી ધર્મી જીવ જીવન જીવે તે ધન્ય છે. સૌ આવું જીવન જીવો એવો ભગવાન મહાવીરનો સંદેશ છે. આ પ્રમાણે બીજી ચિત્તી શક્તિ અહીં પૂરી થઈ. હવે દૃષ્ટિ શક્તિ. હાજી अभी आप ही प्रश्न पूछकर जा रहे हैं. देखो आपका प्रश्न ऐसा है, यहाँ पर जीवत्व जो शक्ति है वह तो डॉक्टर साहब, जीवत्व नाम की जो शक्ति है वह इस जीव में कब से है? तो अनादि से है. तो यहाँ ये बता रहे हैं कि जीव की जो विद्यमानता है वह विद्यमानता अनादि से है. वह जीवत्व शक्ति वो भाव प्राण सहित है. वो भाव प्राण जीव जीवत्व शक्ति बताए. जीव का जीवपना क्या है? वो काहे से जी रहा है? तो अपने भाव प्राणों से. चैतन्यमयी जीवत्व शक्ति ऐसी बताई थी. अभी यहां कहते हैं कि जीव कैसा है, जीव का लक्षण क्या है? ज्ञान. अभी ज्ञान तक सीमित करते हैं. तो ये ज्ञान जो है वह चिति शक्ति के द्वारा बताया जाता है. तो आत्मा का ज्ञान आत्मा का लक्षण ज्ञान कहेंगे तो हमें कोई तकलीफ नहीं. आत्मा का लक्षण चिति कहेंगे तो अभी अपनी बात किससे हो रही है कि आत्मा की ही बात चल रही ना. तो यहाँ आत्मा कब से है? तो अनादि से है. तो किस रूप से है? तो आत्मा तो निश्चित रूप से ज्ञानमय है. तो यह चिति शक्ति के द्वारा उसका लक्षण यह है. चिति यानी ज्ञान, जानना, चैतन्यमय रहना. अब दृष्टि भी आएगी उसी में आएगी. तो अभी बताएंगे. देखो यानी आपका जो कहना है कि एक गुण के लिए दूसरा गुण लक्षण कैसा होगा, तो वह तो पूरे द्रव्य को ही यहां लेकर उसका लक्षण बताया. अभी क्या कहते हैं? दृष्टि शक्ति अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति. अभी क्या कहना चाहते हैं? देखो पहले तो हम ये देखते हैं कि आत्मा का लक्षण क्या है. तो कहते हैं उपयोगो लक्षणम. तो उपयोग जो है वह दो प्रकार का है, एक ज्ञानोपयोग और एक दर्शनोपयोग. तो ज्ञान वाला उपयोग जो है वो चिति शक्ति के द्वारा बताया गया है. अब यहाँ जो कह रहे हैं जो दृष्टि शक्ति यानी जो कैसी है, उपयोगमयी है, लेकिन कैसी उपयोगमयी है? तो कहते हैं अनाकार. अनाकार का अर्थ कोई विशिष्ट आकार उसका हो ऐसे नहीं. देखो केवल ज्ञान को क्या कहा है मालूम है आपको? प्रेरणा बिना आप जानते हैं केवल ज्ञान को क्या कहा? साकार कहा. बहुत अच्छा, साकार कहा. और केवल दर्शन को अनाकार कहा. यानी क्या है? ये ज्ञान जो है ना, जानना 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 जानना, सबको विशेष रूप से यानी अलग 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 कर कर करके सबको जाने, और दर्शन जो है या दृष्टि जो है वो सबको देखे, पर वो कैसे, कोई आकार नहीं, समूह रूप से, अनाकार रूप, यानी उसमें कोई विशिष्ट एक पदार्थ को जुदा करते हुए नहीं जाने, भेद किए बिना। लेकिन चिति यानी ज्ञान कैसा है, तो कहते हैं सबका भेद करके एक 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 पार्ट एंड पार्सल एकदम जुदा जुदा, यानी हमने देखा ना अनंत द्रव्य, उनके अनंतानंत गुण, उनके अनंतानंत पर्याय, और एक एक पर्याय के अनंतानंत अविभाग प्रतिच्छेद, इनको सबको जुदा 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 जुदा, भिन्न भिन्न भिन्न, लेकिन कैपेसिटी कैसी, युगपत एक साथ जाने। तो यहां हमें कौन देखना है, अनाकार उपयोग में ही, यानी ये जो जो ज्ञान में अनंत 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 ज्ञान में आए हैं, वो भेद करके अलग 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 जाना है ज्ञान ने। लेकिन ये दर्शन या दृष्टि जो शक्ति है, वो भेद किए बिना, वो साकार है तो ये अनाकार है। तो यहाँ कहते हैं अनाकार उपयोग में ही दृष्टि शक्ति। अभी क्या कह रहे, देखो, जेमा ज्ञेय रूप आकार अर्थात विशेष नथी एवा दर्शनोपयोग मई सत्ता मात्र पदार्थमा उपयुक्त थवा मई दृष्टि शक्ति अर्थात दर्शन क्रिया रूप शक्ति। क्या बताया यहाँ, जो ज्ञेय है, ज्ञेय यानी जो जानने में आ रहे हैं वे पदार्थ, उसका आकार ऐसा विशेष जिसमें नहीं है, ऐसे जो दर्शनोपयोग, वो क्या करते हैं, दर्शनोपयोग में ही जो शक्ति कहो या गुण है, वो क्या कर रहे हैं, सत्ता मात्र पदार्थ में उपयुक्त होती है, और वह थवामयी ऐसे कौन है, तो दृष्टि शक्ति, उसी को हमने दर्शन क्रिया रूप शक्ति। अभी ये दर्शन यानी अभी हम बताते समय तो देखती है कहना या अवलोकन करती है कहना, ये तो बराबर है, लेकिन कभी कभी हम क्या कहते हैं, कहते भी है तो उपचार का कथन है समझना, कि सबको भेद किए बिना जानती है, तो ये जानना तो ज्ञान का कार्य है, ख्याल में है? लेकिन अभी समझा भी कैसा, हाँ आप कुछ कह रहे थे,
यानी वहाँ ग्रहण करना शब्द लेना जो ज्ञान के लिए भी होता है और दर्शन के लिए भी होता है, तो कैसा ग्रहण, बस है इतना ग्रहण हुआ, वो कौन सी वस्तु है वो नहीं ग्रहण हुआ, क्योंकि कौन सी वस्तु है तो उसके लक्षण जानेंगे तो कौन सी वस्तु ये ख्याल में आएगा, तो कौन सी वस्तु है ये जानना, ये ग्रहण करना, ये ज्ञान का कार्य है, और वस्तु है इतना मात्र, सत्ता को ग्रहण ना, सत्ता मात्र पदार्थ, वस्तु की सत्ता है इतना ही ग्रहण हुआ है, वो कौन सी वस्तु है इसका कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है, तो उसको कहेंगे दर्शन। हाँ, एट अ टाइम होता है युगपत, केवल दर्शन और केवल ज्ञान युगपत होता है, यानी वहां वस्तुओं की सत्ता को भी ग्रहण करते हैं और उसी समय ज्ञान होता है,
यानी डिफरेंटली जानते हैं। देखो ऐसा मत जो है ना, कि जैन दर्शन यानी दिगंबर आमना के अनुसार संसारी जीव, संसारी नहीं छद्मस्त जीव, संसारी गलत बात है, छद्मस्त जीव उसका ज्ञानोपयोग हो रहा है, उसके पहले दर्शनोपयोग निश्चित रूप से होगा, और जब यह जीव केवल ज्ञान सर्वज्ञ हो गया केवल ज्ञानी हो गया, तो उसके दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दोनों युगपद होते हैं, युगपद यानी एक साथ, यानी जीविश्व के जो अनंत 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 जो कोई हमने डिविजन्स करके देखी बातें हैं, उनको बिना भेद किए जानना और उसी समय भेद करते हुए अलग अलग जानना, ये सिर्फ केवल ज्ञानी में ही पॉसिबल है, क्योंकि उसके केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक साथ वर्त रहा है, यानी उसमें उसका उपयोग लगा है सब एक साथ। अभी अपने तुम्हारे क्या बात है, जो छद्मस्थ जीव है उनके क्या है, कार्य तो दोनों में हो रहा है, दर्शन गुण का कार्य यानी दृष्टि गुण का कार्य और चिति गुण का कार्य, कार्य तो दोनों जगह हो रहा है लेकिन उपयोग एक जगह लगेगा, पहले दर्शन में लगेगा और वहां से हटकर उपयोग ज्ञान में लगेगा। तो कहते हैं उपयोग जो है वह उसमें क्रम है, किसके? छद्मस्त के। लेकिन केवल ज्ञान जब प्राप्त होता है तो उसी के साथ में केवल दर्शन भी होगा, उसी के साथ में अनंत वीर्य भी होगा, ये तीनों एक साथ होते हैं। लेकिन वो जो पहले वाला जो है ना अनंत सुख वाली बात, जो क्षायिक सम्यक और क्षायिक चारित्र, वो पहले हो जाता है सर्वज्ञता आने के पहले, लेकिन उसकी अनंतता इसके साथ होती है। अब यहाँ क्या कह रहे देखेंगे हम, आपके प्रश्न का उत्तर मिला भाई? देखो यहाँ क्या कहते हैं, जो आत्मा मा अनंत शक्तियों छे तेमा जीवत्व अने चिति शक्ति नु आचार्य देवे पहला वर्णन कहिरूं, आ तो वर्णन मा क्रम पड़ियो, बाकी वस्तु मा तो शक्ति अक्रमे छे। हवे आई तो आपने 47 शक्ति याद की, हाँ तो बोलो, तो हम आगे पीछे बोले तो घबराना मत, लेकिन क्रम से बोलना चाहिए, ये बात तो अच्छी है। कभी कभी क्या होता है पांचवे की जगह छठा, छठे की जगह पांचवा बाय चांस हो जाता है, तो ऐसा हमको मत बोलना एक बदा अक्रमे छे तमे चुबेड़ो है तो ऐसा ही है वो तो ज्ञान दर्शन सुख वीर ऐसा हम क्रम से बोलते हैं, लेकिन है तो सभी एक साथ, उसमें पहले दूसरा ऐसा अस्तित्व में रहने के लिए क्रम नहीं है, बोलने में क्रम आएगा। तो यहाँ क्या कहते हैं, आ तो वर्णन में क्रम पड़ियो, बाकी वस्तु में तो शक्तियों अक्रमे छे। अवे आए त्रीजी दृष्टि शक्ति कहे छे, केवी छे ते दृष्टि शक्ति? तो कहे छे अनाकार उपयोग में ही दृष्टि शक्ति छे, दृष्टि नाम दर्शन देखवा रूप आ शक्ति छे, ते आत्मद्रव्य ने देखे छे, पोताने देखे छे, परने देखे छे, गुणने देखे छे, पर्याय ने देखे छे, अने ते बधाने भेद पाड्या विना देखे छे। ये महत्व की बात है, कैसा? भेद पाड्या विना। आ स्वद्रव्य छे अने आ परद्रव्य छे, आ चेतन छे आ चेतन छे, एम भेद पाड़ी ने देखती नथी, सामान्य सत्ता मात्र वस्तु ने ग्रहण करे छे, देखे छे। बहु सूक्ष्म बात भाई। तो शुं दर्शन उपयोग जीव अजीव बधाने एक में करी देखे छे? क्या कहा, एक में करी ने देखे छे ऐसा पूछा? तो कह रहे नहीं नहीं एम नथी, ते सत्ता मात्र ज देखे छे, आ सत छे बस एटलू ज देखवा पणू छे, पण आ स्व छे आ पर छे इत्यादि एमा विशेष ग्रहण करवा पणू नथी। एमा एटले दृष्टि शक्ति मां के दर्शन उपयोग मां विशेष भेद पाड़ी ने ग्रहण करवानू कार्य तो करवानू तो ज्ञाननू कार्य छे। आहा अनाकार उपयोग में ही दर्शन दर्शन शक्ति छे, अनाकार अर्थात आकार नहीं, एटले शुं शुं तेनो आकार नाम क्षेत्र नथी, एम नथी? भगवान आत्मानु जे असंख्य प्रदेशी क्षेत्र छे ते जेनु क्षेत्र छे, सर्व अनंत गुणनु आ एक ज क्षेत्र छे, जो क्षेत्र न होय तो शक्ति ज न होय, शक्ति नु होवापनु ज सिद्ध न थाय। यानी क्या बताना चाहते हैं, हम अपनी भाषा में समझेंगे, जो कोई द्रव्य है जो कोई गुण है, अभी पर्याय की बात छोड़ो, पर्याय को ले सकते हैं हम, इनको द्रव्य क्षेत्र काल और भाव चारों बातें होंगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई गुण को तीन ही बातें हैं, तो यहाँ कहते क्षेत्र नहीं है, ऐसा आपने बोला ना भेद पाड़े बिना। तो क्या कह रहे, देखो देखो अनाकार, अनाकार कहा ना उसको, तो कहते शू एनो आकार नाम क्षेत्र ज नथी, कोने? दृष्टि शक्ति ने। तो एक गेम नथी, भगवान आत्मानु जे असंख्य प्रदेशी क्षेत्र छे तेज एनु एनु एटले केनु દૃષ્ટિ શક્તિનું ક્ષેત્ર છે, સર્વ અનંત ગુણનું આ એક જ ક્ષેત્ર છે. જો ક્ષેત્ર ન હોય તો શક્તિ જ ન હોય, શક્તિનું હોવાપણું જ સિદ્ધ ન થાય, અને તો વસ્તુ જ સિદ્ધ ન થાય. દેખો અભી હમ થોડા સા યે દેખતે હૈ કે કોઈ ભી બાત ઘટિત હોની હૈ તો ઉસકો ચાર બાતે અવશ્ય હોની ચાહિએ. તો આપકો કહા, આપકો કોઈ આપ ઓફિસ મે બેઠે હૈ તો આપકે કોલ બોલતે કામ ક્યા બોલતે પ્યુ ના કે બોલે કે આપકો મિલને આયે હૈ કોઈ બોલે હા મુજે મિલને અભી તો ઓફિસ બંધ હોને કા ટાઈમ હો ગયા કોણ હૈ તો કે ભગવાન મહાવીર આપકો મિલને આયે. તો દ્રવ્ય જો હૈ વો અસ્તિત્વ મે હોગા તો તુમકો મિલેગા ના, અભી જો સિદ્ધ બને હૈ વો થોડી તુમકો મિલને આને વાલે. તો કહેંગે તો યે બાત આપકી ક્યા બોલતે હૈ મીટિંગ નહીં હોગી. તો ફિર અચ્છા 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 જાઓ જાઓ ભગવાન મહાવીર કો લે આવો. તો બોલતે સાહેબ લેકિન વો આપકો મિલના ચાહતે હૈ તો કહાં મિલે. તો બોલતે કહાં મિલના ચાહતે હૈ તો કહેંગે વિદેહ ક્ષેત્ર મે. તો ક્ષેત્ર અગર પક્કા નહીં હોતે તો કાર્ય ભી નહીં હોગા. હા ફિર કાલ કે બારે મે પૂછેંગે કબ કાલ મે કબ મિલના હૈ તો કહેંગે 5 સાગર વર્ષ કે બાદ. તો તું મનુષ્ય પર્યાય મે કહાં 5 સાગર તક રહેને વાલા હૈ તો વો ભી હોને વાલે નહીં. ઇસ તરહ અભી બહુત લંબી બાત હૈ. ઇસ તરહ કોઈ ભી કાર્ય હોગા યા કોઈ ભી વસ્તુ કો સિદ્ધ કરના હૈ તો ઉસકો દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ ભાવ ચારો હી બાતે હોતી હૈ, હોની હી ચાહિયે. વો હોગી તો હી વહ વસ્તુ હૈ યા કાર્ય હોગા. ઇસલિયે યહાં કહે રહે હૈ ये आप अनाकार अनाकार कह रहे तो उसको क्षेत्र है कि नहीं, तो कहते हैं हाँ क्षेत्र है. भगवान आत्मा नु जे असंख्य प्रदेशी क्षेत्र छे तेज एनु क्षेत्र छे, सर्व अनंत गुण नु आ एक ज क्षेत्र छे. जो क्षेत्र न हो तो शक्ति ज न हो. अब ये क्यों ऐसा कहा समझ में आए ना, क्योंकि उसके भी क्षेत्र होगा शक्ति नु. हम बहुत बार ऐसा बोलते है ना, जितना बड़ा गो जेवड़ो मोटो गोड़ એટલું મોટું એનું ગળપણ. તો જીતના બડા દ્રવ્ય ઉતના બડા ઉસકા ગુણ. તો એ આત્મા કિતના અસંખ્યાત પ્રદેશી હૈ, તો જ્ઞાન ગુણ કિતના બડા અસંખ્યાત પ્રદેશી, દર્શન ગુણ કિતના બડા અસંખ્યાત પ્રદેશી, અનંત ગુણ કિતને બડે અસંખ્યાત પ્રદેશી. ઇસ તરહ કહેતે હૈ કે જો ક્ષેત્ર જ ન હોય તો શક્તિ જ ન હોય. થર્ડ લાઈન પઢ રહા હું મેં, શક્તિનું હોવાપણું જ સિદ્ધ ન થાય અને તો વસ્તુ જ સિદ્ધ ન થાય. દર્શનને અનાકાર કહ્યું એ તો એનો વિષય સામાન્ય સત્તા માત્ર જ છે એ અપેક્ષા એ વાત છે. યાને ઉસકા ક્ષેત્ર નહીં હૈ ઇસકી બાત નહીં કર રહે. જો સામાન્ય અને વિદાઉટ વિશેષ કિયે બિના ભેદ કિયે બિના જો સત્તા માત્ર વસ્તુ હૈ ઉનકો દેખના, આ ચીજ આત્મા છે, આ ચીજ જડ છે, આ સ્વ છે, આ પર છે, આ જીવ છે, આ જ્ઞાન છે, એમ ભેદરૂપ આકારનું ગ્રહણ સર દર્શન શક્તિમાં નથી. બધું સામાન્ય સત્પને ગ્રહણ હોય છે. બસ ભાઈ આ શક્તિનું સામર્થ્ય તો જો આહ, તેનું ક્ષેત્ર તો અસંખ્ય પ્રદેશી જ છે, પણ આખા લોકાલોકને દેખી લેનારા કેવળ દર્શનરૂપ થાય એવું એનું અપરિમિત બેહદ સામર્થ્ય છે. ઓહો આ તો અલૌકિક વસ્તુ છે ભાઈ, તારી વસ્તુ આવી અપાર અનંત સમૃદ્ધિથી ભરી છે, પણ અરે તે તારા ચૈતન્ય નિદાનમાં નજર કરી નહીં. ભાઈ તું માન કે દયાદાન વ્રત તપ ભક્તિ પૂજા ઇત્યાદિ શુભ અનુષ્ઠાન વડે ધર્મ થઈ જશે, પણ એવી તારી ચીજ નથી બાપુ, ને એવું ધર્મનું સ્વરૂપ પણ નથી. વિચાર તો કર, અનાદિકાળથી ક્રિયાકાળના રાગનું સેવન કરીને મરી ગયો પણ ધર્મ પ્રકટ થયો નહીં. અરે તારો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ભગવાન સ્વરૂપે અંદર વિરાજે છે, તેનો તે અનાદર કર્યો છે, અને દેહ અને રાગનો આદર કર્યો છે. દેખવાની શક્તિવાળો જે દેખનાર મહાપ્રભુ છે तेने ते देखो नहीं। कभी कभी स्वामी जी बहुत पोएटिक बोलते हैं, बहुत मतलब अच्छा अने दे, आहा, देखना ने देखवानी दरकार सुद्धा करी नथी, कितना रिदमेटिक अनुप्रास सहित बोलते। पण भाई अंदर देखनारो दृष्टा छे, तेमा दृष्टि करे त्यारे धर्म प्रकट थाय, आवी वात छे। आ आत्मा कारण परमात्मा छे, त्रिकाळी ध्रुव चिन्ह मात्र द्रव्य ने कारण परमात्मा कहेवाय छे, अने केवल दर्शन केवल ज्ञान नी पर्याय प्रकट थाय तेने कार्य परमात्मा कहे छे। त्यारे एक बार प्रश्न थयो हतो के क्या कहा, देखो हम पहले से देखेंगे क्या कहते हैं। आ आत्मा कारण परमात्मा छे, ये कारण परमात्मा क्यों कहा है? अगर हम उसका आश्रय लेते हैं तो वह कारण परमात्मा पणा जो है वह पर्याय में प्रकट होता है, तो जो पर्याय में प्रकट जिसने किया है वह कार्य को कार्य परमात्मा कहेंगे। अब यहाँ क्या कह रहे देखो, आ आत्मा कारण परमात्मा छे, त्रिकाळी ध्रुव चिन्ह मात्र द्रव्य ने कारण परमात्मा कहेवाय छे, अने केवल दर्शन यानि जैसा आत्मा है वैसा केवल दर्शन केवल ज्ञान आदि जो पर्याय प्रकट थाय तेने कार्य परमात्मा कहे छे। तभी एक प्रश्न हुआ, कौन सा? जो भगवान आत्मा ध्रुव कारण परमात्मा छे तो तेनु कार्य प्रकट थवु जोइए ने, तो उसको आप कारण कह रहे हैं, तो अभी तो कार्य क्यों नहीं प्रकटा, ऐसा पूछते हैं। त्यारे कहूं तू के ध्रुव द्रव्य ते कारण परमात्मा छे, पन तेनी जेने दृष्टि थाय तेनी जेने दृष्टि थाय तेने तेनु कार्य पर्याय मा प्रकट थाय छे। अपने पास अब जो रुपये की संपत्ति है और हमें पता ही नहीं कि हमारे पास इतने पैसे हैं, तो उस पैसे का होना नहीं होना क्या है? एक बराबर है ना? जैसे कोई बहुत अमीर का लड़का हो, छोटा बालक 2 साल का 3 साल का, उसको क्या बोलते हैं, लखोटी बोलते हैं ना आप लोग, गोली गोटी, वो खेलने के लिए हीरे दिए जाए इतने बड़े बड़े, और वो ऐसा जमीन पे खेले, तो उसको इस हीरे की कुछ कीमत नहीं है, यानी हीरा क्या है ये उसको पता नहीं है ना। वैसे यहाँ कह रहे हैं कि तू कारण परमात्मा है यही बात तुझे मालूम नहीं है, तो कार्य कैसा प्रकट होगा, तू कार्य परमात्मा कैसा बनेगा? देखो क्या कहा, ध्रुव द्रव्य ते कारण परमात्मा छे, पन तेनी जेने दृष्टि थाय तेने तेनु कार्य पर्याय मा प्रकट थाय छे। वस्तु यानी द्रव्य कारण परमात्मा तो पूर्णानंद स्वरूपे नित्य विराजमान छे, पन तेनी दृष्टि अने तेमा रमणता लीनता करे तेने पर्याय मा कार्य परमात्मा प्रकट थाय छे। हवे जेने हूँ परमात्मा स्वरूप त्रिकाळी ध्रुव द्रव्य छू एम स्वीकार ज नथी तेने कारण परमात्मा क्या छे? देखवानी शक्ति नो धरनारो अनंत शक्ति संपन्न प्रभु कारणपने शाश्वत विद्यमान छे, पन तेनु भान कर्या विना तेनो दृष्टिमा स्वीकार कर्या विना कारण परमात्मा छे ए क्या रह्यो? भाई उपयोग ने अंतर मा वाळी त्रिकाळी द्रव्यना ज्ञान श्रद्धान प्रकट करे तेने ज हूँ कारण परमात्मा छू एम निश्चय थाय छे, अने तेने ज अंतरलीनता वड़े केवल दर्शन केवल ज्ञान रूप कार्य प्रकट थाय छे। क्या कहा? मैं कारण परमात्मा हूँ ऐसा निश्चय जिसके होगा यानी ज्ञान होगा, तेने तेने ज अभी केवल जानने से हाँ मैं कारण परमात्मा तो नहीं चलेगा, अंतरलीनता वड़े केवल दर्शन और केवल ज्ञान रूप कार्य प्रकट होगा। आत्मा पूर्णानंद प्रभु अनंत शक्ति नो पिंड त्रिकाल एक रूप द्रव्य छे। शक्ति अने शक्तिवान नो भेद पण जेमा नथी एवा भेद एक रूप सामान्य ने विषय बनावी तेना प्रतीति अने अनुभव करे तेनु नाम सम्यक दर्शन छे। त्रिकाळी वस्तु तो वस्तु मा छे पण आवू हूँ त्रिकाळी ध्रुव चैतन्य तत्व छू एम श्रद्धानी पर्याय मा तेनो स्वीकार थाय त्यारे कारण परमात्मा नो यथार्थ निर्णय थाय छे। त्रिकाळी चीज छे ते कई पर्याय मा आवती नथी पण त्रिकाळी द्रव्य नु ज्ञान अने श्रद्धान पर्याय मा प्रकटे छे। ये ऐसा जो कहने में आया ना त्रिकाळी चीज थे ते कई पर्याय मा आवती नथी, ऐसा तो कहेंगे कि जैसा त्रिकाली स्वभाव है वैसी पर्याय उसके तरफ देखेगी तो वह पर्याय और द्रव्य एकमेक हो गया। ये एकमेक हो गया का अर्थ ऐसा नहीं समझना कि दोनों मिलकर एक हो गए, क्योंकि पर्याय कितने समय रहती है, एक समय। तो अगर त्रिकाली द्रव्य उस पर्याय में सम्मिलित हो जाए तो पर्याय एक समय में खत्म होगी तो द्रव्य रहेगा कि नहीं? अरे आप तो बोल रहे एक में खो गए और कहते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। अरे द्रव्य तो स्ट्रांग है, एक समय के पर्याय का तो अपने रूप बना देवे। तो कहते हैं कभी भी त्रिकाली द्रव्य पर्याय बिना होता ही नहीं। अगर द्रव्य पर्याय बिना हो जाए तो द्रव्य का नाश हो जाएगा। इसलिए ये कहने की बात है, समझना अपने को चाहिए। क्या कहते हैं त्रिकाळी चीज थे ते कई पर्याय में आती नहीं तो शू थे पर त्रिकाळी द्रव्य नु ज्ञान अने श्रद्धान पर्याय में प्रगटे छे अने त्यारे आ हूँ कारण परमात्मा छू एम एनो वास्तविक स्वीकार थाय छे। अरे भाई दृषि ना विषय ने दृष्टा ने देख्या विना तेनी प्रतीति केवी? ये दृषि का जो विषय है कौन है? दृष्टा यानी ज्ञाता जिसको हम कहेंगे, वैसे यहाँ दृष्टा तेने देख्या विना तेनी प्रतीति एटले श्रद्धा केवी अने विना प्रतीति कारण परमात्मा छू ए वात क्या रहे छे? हाई कहे छे आत्मा मा अनाकार उपयोग में एक दृष्टि शक्ति छे तेनु कार्य शू? तो कहे छे आ आत्मा आ ज्ञान आ दर्शन आ पर्याय आ हे ने आ उपाय एम कोई भेद पाड्या विना जे सामान्य प्रतिभास थाय छे ते दृष्टि शक्ति नु कार्य छे। जेम भेद जेनो विषय नथी एवी अनाकार उपयोग में दृष्टि शक्ति छे। अनाकार एटले विशेष विना सामान्यपणे देखूं जेमा ज्ञेय रूप आकार नथी विशेष नथी जेमा सत्ता मात्र पदार्थनो प्रतिभास थाय छे एवी सामान्य अवलोकन मात्र दृष्टि शक्ति छे। आ दृष्टि शक्ति सूक्ष्म छे, भेद पाडीने विशेषपणे जाणवू ए तो ज्ञाननु कार्य छे। आ आत्मा जेम निर्णय थयो ए तो ज्ञान छे। ते ज्ञानना थवा पेला छद्मस्तने लख्यु ने दृष्टि शक्ति मा सामान्य प्रतिभास रूप उपयोग वर्ते छे। केवड़ी ने ज्ञान अने दर्शन बन्ने उपयोग साथे वर्ते छे। अभी ऐसा है ना जो जीव ने अपना जो उपयोग स्व में ही परिपूर्ण लगा दिया है एक अंतर्मूर्त काल तक लगातार वो अपने स्वरूप में लीनता होगा तो उस लीनता का फल केवल ज्ञान है। तो अभी उसको उपयोग लगाना नहीं पड़ेगा कहीं पर्टिकुलर वस्तु में, क्योंकि अभी उसके पूरे विश्व ही ज्ञान में आ रहे हैं ना। तो उपयोग क्या करता है? अभी यहाँ लगाया तो थोड़ी देर से वहां लगाया, थोड़ी देर से वहां लगाया, थोड़ी देर से चेंज होता है ना। अभी तो कहते हैं उसको कहीं चेंज करने का गरज ही क्या? सारी की सारी बातें उसके ज्ञान का विषय हो गया है। तो ये एक जगह उपयोग लगाकर अंतरलीनता करना उसका फल क्या है? केवल ज्ञान। अभी सब उसका पहले तो कैसा था? लब्धि रूप था, उपयोग रूप था, अभी तो सभी उपयोग रूप हो गया, खत्म। ख्याल में तो कहते हैं छद्मसने दृष्टि शक्ति में सामान्य प्रतिभास रूप उपयोग वर्ते जे केवड़ी ने ज्ञान ने दर्शन बनने उपयोग साथे वर्ते छे। दृष्टि शक्ति एक गुण छे, तेनो धरनार आत्मा गुणी छे, त्यारे गुणी एवा त्रिकाली द्रव्य नो अंतर में स्वीकार थाय त्यारे दृष्टि शक्ति पर्याय में उछड़े छे, तेनू पर्याय में प्रणमन थाय छे, देखवारू पर्याय प्रकट थाय छे, देखवारू स्वभाव ध्रुवपने हतो तेनू पर्याय में प्रणमन थईने देखवारू कार्य प्रकट थाय छे। हवे आवी पोतानी चीजनी दिगंबर में जन्मलानी खबर न मड़े। क्या कहा समझ में? अश्विन भाई क्या कहते हैं? यह जो ज्ञान और दर्शन की जो बात यहाँ पर बताई जा रही है, तो क्या कहा देखो, सेकंड लाइन के लास्ट वर्ड ये पैराग्राफ में, देखवा रूप स्वभाव ध्रुवपने हतो तेनु पर्याय में प्रणमन थई ने देखवा रूप कार्य प्रकट थाय छे। क्यारे? अनंत मतलब दर्शन हो गया या केवल दर्शन हो गया तब। हवे आवी पोतानी चीजनी दिगंबर मां जन्मेला ने खबर न मड़े, यानी जो दिगंबर कुल में जन्मा है उसको भी ये क्या है मालूम नहीं है। शू था है? कुल थी कहीं दिगंबर धर्म नहीं, दिगंबर तो वस्तुनु स्वरूप छे। अभी देखो इतनी क्लैरिटी है उनके अंडरस्टैंडिंग में कथन में, फिर भी कोई लोग वो क्या कहते सुनने का ही नहीं। अरे ये तो सब इतने सारे बना रहे ना, अभी सब अपने दिगंबरों को खींच रहे ना, वो श्वेतांबर बनाने वाले हैं, तो लोगों को भड़काया। ये ऐसा बोला ना, कुर्ती का ही दिगंबर न थी तो आज दिगंबर न थी, ऐसा कहा कि जो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है ऐसा कहता है वो दिगंबर नहीं है, ऐसे नारे कहां लेवल कहां है समझ लेना। आत्मा अंतर्मा विकल्पना वस्त्र रहित, देखो देखो क्या कहा, आत्मा अंतर्मा विकल्पना वस्त्र रहित, यानी जो अंतरंग कषाय है कौन से, मिथ्यात्व क्रोधमान माया लोभ और नव नौ कषाय, वो अंतरंग विकल्पना वस्त्र तेरे निर्विकल्प अनंत शक्तियों पिंड छे तेने दिगंबर कहिए। अने जारे आवा आत्माना भान सहित अंतरंग दशामा मुनिपनु प्रकट थाय त्यारे बारमा पंच महाव्रत ने नग्न दशा निमित्तपने होय छे, तेनु नाम दिगंबर धर्म छे। आ कोई पक्षनी वात नथी प्रभु, आ तो वस्तुनु स्वरूप ज आवुं छे, समझाणो काय? अनाकार उपयोग में दृष्टि शक्ति छे एटले शुं के जेमां ज्ञेय रूप आकार नथी, विशेषता नथी, बधुं सामान्य सत्ता मात्र देखवामां आवे छे, एवा उपयोग में दर्शन शक्ति छे। दर्शननी पर्याय स्वने अने परने देखे छे, पण एमां आ स्व अने पर एम भेद होतो नथी। भेद ए दर्शन शक्ति नो विषय नथी, वळी एकला परने देखे ए दर्शन शक्ति नु वास्तविक कार्य नथी। आत्मा सहित सर्व पदार्थों नी सत्ता ने देखे तेज एनु वास्तविक कार्य छे। द्रव्य गुण मा व्यापक आ दर्शन शक्ति वास्तविक क्यारे परिणमे, यानी उसका सम्यक परिणमन कब से चालू होगा, के जारे उपयोग ने अंतर मा अभेद करीने स्वने ग्रहण करे ग्रहे देखे त्यारे। आ सिवाय एकला परने जानता पहला अज्ञानी ने तेनु जे सामान्य दर्शन थाय छे ते शक्ति नु वास्तविक कार्य नथी, विवारूप कार्य थाय छे। ये तो अदर्शन छे, अज्ञानता छे। ये अदर्शन और अज्ञानता क्या बताए भाई, कौन से भाव है? हाँ, दृष्टि शक्ति वाला द्रव्य ने देखवा थी પોતાને અને પરને ભેદ પાડ્યા વિના દેખવાની પર્યાય ઉત્પન્ન થાય છે અને તેની સાથે બીજા અનંત ગુણની નિર્મળ પર્યાય પ્રકટ થાય છે. અહીં વિકારની રાગની વાત લીધી નથી, કેમ કે વિકાર કોઈ શક્તિનું કાર્ય નથી. વિકાર તો પર્યાય બુદ્ધિથી પરતરફ લક્ષ્ય કરવાથી ઉત્પન્ન થાય છે. ખરેખર તે જીવના ત્રિકાળી સ્વરૂપમાં નથી. તે એટલે રાગ ક્રોધમાન માયેલું. અને દર્શન ગુણની નિર્મળ પર્યાય પ્રકટવા સાથે જે અનંત ગુણની નિર્મળ પર્યાય પ્રકટ થાય તેમાં રાગાદી વ્યવહાર નથી, એનો અભાવ નાસ્તી છે. આમ બધું અનેકાંત છે. કેટલાક કહે છે વ્યવહારથી નિશ્ચય થાય, પણ એ બરાબર નથી. અહીં તેની ના પાડે છે કે અરે ભાઈ જરા સમજણમાં તો લે કે આ શું વાત છે, પછી અંતરમાં પ્રયોગ કરે એ તો અલૌકિક વાત છે. ત્રિકાળી દ્રવ્યના આશ્રય જ્ઞાન માત્ર ભાવનું પરિણમન થતાં અંદર દૃષ્ટિ શક્તિ ઉછળે છે, પરિણમે છે અને સાથે આનંદ શક્તિ ઉછળે છે, પર્યાયમાં પ્રકટ થાય છે. આ બધી ક્રમબદ્ધ પ્રકટ થાય છે, અર્થાત તે કાળે તેમની જન્મક્ષણ છે તો પ્રકટ થાય છે. જન્મક્ષણ ઉસ સમય ઉત્પન્ન હોને કી ઉસકી યોગ્યતા. પ્રવચન સારના જ્ઞેય અધિકારમાં ગાથા 102 માં આ વાત આવી છે. જ્ઞેયનો એટલે દ્રવ્યનો આવો સ્વભાવ છે એમ ત્યાં વર્ણન કર્યું છે. શ્રી જયસેન આચાર્ય દેવે આ પ્રવચન સારના જ્ઞેય અધિકારને સમ્યક દર્શનનો અધિકાર કહ્યો છે. ત્યાં જ્ઞેયનો સ્વભાવ એટલે દ્રવ્યના સ્વભાવની વાત છે. છે દ્રવ્યનો આ સ્વભાવ છે તેની પ્રત્યેક પર્યાયની જન્મક્ષણ છે, અર્થાત જે સમયે જે પર્યાય થવાની હોય તે પર્યાય તે સમયે પ્રકટ થાય છે એને જ જન્મક્ષણ કહેવાય છે. દ્રવ્યની પ્રત્યેક પર્યાય પોતાના સ્વકાળે પ્રકટ થાય છે. ત્યારે તો કહ્યું કે ક્રમવર્તી પર્યાય અને અક્રમવર્તી ગુણોનો સમુદાય તે આત્મા છે. આત્મા કે ડેફિનેશન ક્યાં દીએ, ગુણ કી બાત ના લેતે હોય ક્રમવર્તી પર્યાય ઓર અક્રમવર્તી ગુણોનો સમુદાય તે આત્મા છે. ભાઈ ભગવાનનો પંથ જેવો છે તેમ ખ્યાલમાં લેવો જોઈએ. યાને યે કહેતે ના ગુણ પર્યાયવત દ્રવ્યમ, તો યે ગુણ કૈસે ઓર પર્યાય કૈસે હૈ, તો કહેતે ગુણ ઓર પર્યાયો કા જો સમૂહ હૈ તો ઉસમેં સે પર્યાય કૈસી હૈ તો ક્રમ સે હોતી હૈ. અબ 10 સમય કી પર્યાય એક સાથ કભી હોગી એસા નહીં. ખ્યાલ મેં એક હી દ્રવ્ય કે એક ગુણ કી 10 સમય કી પર્યાય એક સાથ હો જાય, 100 સમય કી હો જાય, એસા કભી નહીં હોગા. તો ક્રમ સે એક કે બાદ એક કે બાદ. ઓર ગુણ કૈસે રહેતે, તો કહેતે કે સમૂહ રૂપ સે, જીસકો હમને દૂસરા શબ્દ દેખા થા સહવર્તી. એક એક શક્તિ પોતાના સ્વભાવથી જ પરિણમન કરે છે ને તેમાં વ્યવહારનો એટલે રાગનો અભાવ છે. આ વસ્તુ સ્વભાવ છે. વ્યવહારથી પણ શક્તિ પ્રકટ થાય ને નિશ્ચયથી પણ પ્રકટ થાય એમ છે નહીં. લોકોને સત્યાર્થની ખબર નથી તેથી તેઓ આ વાતનો વિરોધ કરે છે, પણ ખરેખર તો તેઓ પોતાનો વિરોધ કરે છે. શું થાય, એક એક શક્તિ નિર્મળપણે પરિણમે છે તેમાં વ્યવહારનો અભાવ જ છે. આ સ્યાદવાદ અને આ અનેકાંત છે. અનેકાંતનો અર્થ એવો નથી કે નિર્મળ પર્યાય વ્યવહારના રાગના લક્ષ્ય થાય ને પોતાના નિશ્ચય દ્રવ્યના એ લક્ષ્ય થાય, એ એસા અનેકાંત નહીં હૈ. આ તો પુદડી વાત છે ભાઈ, મિથ્યા અનેકાંત છે. આત્મા ચૈતન્ય વસ્તુ છે, તે દ્રવ્ય છે, તેમાં આનંદ શક્તિઓ છે. શક્તિનું પરિણમન થાય તે પર્યાય છે અને જે વેદન થાય છે તે પર્યાયમાં થાય છે. શક્તિ તો નિત્ય ધ્રુવ સ્વરૂપે છે, તેમાં કાર્ય નથી, કાર્ય પર્યાયમાં થાય છે. વેદન અનુભવ પર્યાયમાં થાય છે, અનુભવ કરો એમ કેટલાક કહે છે, પણ બિચારાઓને અનુભવ શી ચીજ છે તેની ખબર નથી. નિરાકર આનંદનું વેદન થાય તે અનુભવ છે અને તે પર્યાય છે. જેઓ પર્યાયમાં દુઃખ છે, દ્રવ્યગુણમાં દુઃખ નથી. સો અનુભવ કરતા પર્યાયમાં જે દુઃખ છે તેનો નાશ થાય છે ને આનંદના વેદનની નવી અવસ્થા ઉત્પન્ન થાય છે. પણ હવે વેદાંતોની જેમ પર્યાય શું છે એ ખબર ન મળે. વો તો વેદાંતી તો પર્યાય હૈ નહીં, ઉસકા માતી નહીં કરતે. પણ તેને અનુભવ શી રીતે થાય? ક્યા કહા? પહેલે મેં પહેલે તો વેદાંતી હૈ વો કૈસે હૈ, મિથ્યા દ્રષ્ટિ હૈ. દૂસરી વાત ક્યા હૈ? વો તો પર્યાય કો માનતે હી નહીં. અગર પર્યાય કો નહીં માનતે તો ઉનકો પર્યાય મેં હોને વાલા અનુભવ કૈસા હોગા? એને તો દુઃખનો જ અનુભવ રે ભાઈ. ઉપયોગની દશાને અંતર્મુખ સ્વાભિમુખ કર્યા વિના સ્વાનુભવની દશા પ્રકટતી નથી. વિતરાગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરે કહેલે વસ્તુ જેમ છે તેમ યથાર્થ જાણવી જોઈએ. આત્માની શક્તિઓ છે તે પારિણામિક ભાવ સ્વરૂપ છે. દૃષ્ટિ શક્તિ તે ભાવ એટલે ત્રિકાળી, અને આત્મદ્રવ્ય તે ભાવવાન. યાની અભી હમ દૂસરી ભાષા મેં કહેંગે, દૃષ્ટિ શક્તિ હૈ વહ ગુણ હૈ ઓર આત્મદ્રવ્ય હૈ વહ ગુણી હૈ ભાવવાન. યાને ભાવ વાલા, ભાવ જિસમે હૈ વહ. ભાવ વાલા કહેને સે ભી ભાઈ ભેદ હો ગયા. એ સમજાને કે લિયે, ક્યોંકિ ભાવ એક હૈ ઓર ઉસકા વાલા ઉપદે સિંહ, યાને પહેલે ભાવ નહીં થા બાદ મેં ઉસને લિયા, એસા નહીં હૈ. એ તો સમજાને કે લિયે મેને બતાયા, ભાવ યાને ગુણ ઓર ભાવવાન યાને ગુણી. તથા તે બંને પારિણામિક ભાવે છે. કોણ? ગુણ ઓર દ્રવ્ય. પર્યાયમાં જે ભાવ પ્રગટે છે તે બીજી ચીજ છે. આ તો શક્તિ અને શક્તિવાન સહજ અકૃત્રિમ સ્વભાવ છે. તે પારિણામિક ભાવે છે. તે નવીન ઉત્પન્ન થતો નથી ને તેનો અભાવ થતો નથી. આહા હા, આવા પારિણામિક ભાવરૂપે દૃષ્ટિ શક્તિ છે. પર્યાયો નવી નવી ઉત્પન્ન થાય છે. જ્ઞાન દર્શન આદિ ગુણો છે તે ઉત્પન્ન થતા નથી, વિનશતા પણ નથી, ચિરકાળ શાશ્વતપણે રહે છે. અહો, આ જૈન દર્શન બહુ સૂક્ષ્મ અલૌકિક છે. તેનો પત્તો લાગી જાય, તેના ભવનો અંત આવી જાય છે. એના વિના બધા ક્રિયાકાંડ વ્રત તપ આદિ સર્વ ફોકટ છે. સંસારનું બંધનું જ કારણ છે. અરે વાહ, અભી 5 મિનિટ હે. આહા હા, ત્રિકાળી દૃષ્ટિ શક્તિ છે તે પારિણામિક ભાવે છે. 320મી ગાથામાં યાને યે દૃષ્ટિ શક્તિ હૈ ના, વો ક્યા હૈ? જીવ કા ગુણ હૈ. હા સર, સ્વભાવ હૈ કહો, ગુણ હૈ કહો. તો યે જો ગુણ હૈ વો કોન સે કર્મ કે કારણ સે હૈ? તો આપને ઉત્તર દિયા સ્વભાવ હૈ ના, તો ઉસમે કહા સ્વભાવ કો થોડી નિમિત્ત લગતા હૈ. તો જૈસા દ્રવ્ય પારિણામિક ભાવ સે વૈસા ગુણ કહો, સ્વભાવ કહો, દૃષ્ટિ શક્તિ કહો, કૈસે હૈ? તો કે જો પારિણામિક ભાવ હૈ તો દ્રવ્ય કે સભી ગુણ કૈસે હૈ? ક્યોંકિ વો ત્રિકાળી હૈ ના, એક દિન કે લિયે બાકી નહીં હૈ, એસા નહીં હૈ. 320મી ગાથામાં મોક્ષનું કારણ કયા ભાવ છે એનો ખુલાસો કર્યો છે. ઔદયિક, ઔપશમિક, ક્ષાયોપશમિક અને ક્ષાયિક આ ચાર ભાવ પર્યાયરૂપ છે ને દ્રવ્ય ગુણ છે તે પારિણામિક ભાવ છે. તેમાં મોક્ષનું કારણ કોણ? ત્યાં ખુલાસો કર્યો છે કે પારિણામિક ભાવ છે તે મોક્ષનું કારણ નથી, કેમ કે તે અક્રિય છે, તેમાં કાર્ય થતું નથી. औदयिक भाव मोक्ष नु कारण नथी, केम के रागादी औदयिक भाव छे ते बंध रूप अने बंधना कारण रूप छे। बाकी ना उपशम क्षोपशम अने क्षायिक ए त्रण भाव मोक्ष नु कारण छे, केम के ते शक्ति ना निर्मल कार्य रूप छे। आवी दर्शन शक्ति नी वात चाले छे। हाँ जी, मैंने क्या कहा? अही दर्शन शक्ति नी वात चाले छे, आहा तेनु अंशे निर्मल परिणमन छे, ते क्षोपशम भावे छे। केवल दर्शन क्षायिक भाव रूप छे, ने दर्शन मा उपशम भाव होतो नथी, ने शक्ति ना परिणमन मा औदयिक भावनो तो अभाव छे। ये क्या कहना चाहते, देखो इसको समझ के अपन बंद करेंगे। यहाँ क्या कहते हैं, अभी क्या बात चल रही है, तो आंशिक आंशिक निर्मल परिणमन हो रहा है। तो ये आंशिक परिणमन कहाँ कहाँ होगा, तो कहते हैं दर्शन गुण में भी, यानी श्रद्धा गुण में भी हो सकता है, ज्ञान गुण में भी हो सकता है, चारित्र गुण में, क्योंकि ये सब क्षोपशमिक भाव है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ये आंशिक भाव चल रहे ना, वह तो क्षोपशमिक भाव है। तो कहते हैं आंशिक निर्मल परिणमन, ये स्वभाव निर्मल, निर्मल कहते हैं स्वभाव परिणमन, वो कैसा है, क्षोपशम भावे छे। और केवल दर्शन और क्षायिक, केवल दर्शन कैसा है, तो क्षायिक भाव रूप से है। और दर्शन मा, यानी ये जो दर्शन कौन सा, ये सामान्य अवलोकन वाला दर्शन, तेमा उपशम भाव होतो नथी, अने शक्ति ना परिणमन मा, यानी ये शक्तियां जो स्वभाव रूप से परिणमन हो रही है, उसमें औदयिक भाव नहीं होते। औदयिक भाव तो कर्मों के उदय से हो रहे ना, तो इसलिए कहते वो उसके कारण से नहीं होती है। अभी बात छे, अभी हम बाकी क्षायिक भाव की बात कल देखेंगे। जावानी के ज्ञान तय तुझे लो कालो सोवाणी मस्तकन मो सदा।